हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। फिलहाल झलक की टीम जीत गई थी। अनामिका और रोहन खुशी से चिल्ला उठे। आदित्य कुछ पल तक झलक को देखता रहा। उसकी आंखों में गर्व था, हल्की सी मोहब्बत भी, लेकिन वो तुरंत मुस्कुराकर बोला, नाइस गेम, बस इतना ही। झलक ने भी सिर हिलाया, थैंक यू। दोनों के बीच बहुत कुछ था जो कहा नहीं गया, पर कोर्ट पर आज सिर्फ खेल जीता गया था। और दिल, वो अब भी एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा बचते हुए धड़क रहे थे। अब अभय और कबीर दोनों बेचारगी से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर पहले तक दोनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब इस तरह से हारने पर दोनों को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं अनामिका तुरंत कबीर के पास आई और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। तभी रोहन ने अभय को देखा, क्योंकि अभी जिस तरीके से वो बीच बीच में रोहन को चिढ़ा रहा था और उसकी कम हाइट का मजाक उड़ा रहा था, अब रोहन मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तभी रोहन ने अभय को देखकर कहा, मैं आपको टास्क दूंगा और आपको मेरा दिया हुआ टास्क पूरा करना ही होगा। वहीं अनामिका ने कबीर को देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें टास्क दूंगी, तुम्हें मेरा टास्क पूरा करना होगा। तभी झलक ने आदित्य को देखा और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को कोई टास्क नहीं देना। लेकिन आदित्य ने झलक को रोकते हुए कहा, क्यों, क्या मुझे टास्क देने में डर रही हो? अगर मैं हारा हूँ तो टास्क देना आपका हक है। बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जैसे ही आदित्य ने हल्की शरारती नज़रों से ये कहा, झलक ने उसे नज़र भर कर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उधर अनामिका ने रोहन से कहा, तुम अभय को क्या टास्क दोगे, जल्दी बताओ। रोहन ने ग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको जो ये ग्राउंड दिख रहा है ना, इसके पूरे 7 चक्कर काटने होंगे, वो भी बिना रुके। ये सुनकर अभय का तो चेहरा ऊपर से नीचे तक उतर गया। वो बोला, यार ये कैसे करूं, मैं तो पहले से ही थोड़ा बीमार हूं, मैं इस तरह से 7 चक्कर नहीं काट सकता। अनामिका तुरंत बोली, देखो रोहन ने जो टास्क दिया है वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मान लूंगी कि आप अपनी जुबान से पीछे हट रहे हैं। जैसे ही अनामिका ने ये कहा, अब अभय की तो बोलती बंद हो गई। वो बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे टास्क मिला है तो मैं जरूर पूरा करूंगा। ये कहकर वो मन मारकर ग्राउंड के चक्कर काटने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें फूलने लगी, हालत खराब हो गई और रोहन बार बार उसे चिढ़ा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। वहीं झलक रोहन की मुस्कुराहट देखकर एक अलग तरह का सुकून महसूस कर रही थी। तभी कबीर ने अनामिका को देखकर कहा, अब तुम बताओ मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे भी 7 चक्कर काटने होंगे? इतने में अभय पूरी तरह थककर वहीं धास पर गिर पड़ा और सभी लोग एक साथ हंस पड़े। कबीर ने फिर अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, बताओ ना मुझे क्या करना होगा। अनामिका हल्की सी मुस्कुराई और बोली, आपको चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे एक किस कीजिए। जैसे ही अनामिका ने बेबाकी से ये कहा, कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। आदित्य हल्का सा खांसते हुए इधर उधर देखने लगा। वहीं अभय तो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बोला, क्या कहा आपने, ये टास्क मुझे क्यों नहीं मिला, आपने मुझे चांस क्यों नहीं दिया, मैं तो तुरंत कर देता, कबीर भाई का टास्क मैं पूरा कर देता, वैसे ये तो भी ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ेंगे, लेकिन किस तो मैं कर ही सकता हूँ, बताइए कर दूँ। सब जोर से हंसने लगे। अनामिका ने नकली सख्ती दिखाते हुए कहा, नहीं, ये टास्क कबीर का है, अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं मान लूंगी कि ये अपनी जुबान से पीछे हट रहे हैं। अब तो कबीर बुरी तरह फंस चुका था, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अनामिका इस तरह का कोई टास्क दे देगी। झलक ने भी हैरानी से अनामिका को देखा, लेकिन वो उसे रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि अनामिका की आंखों में कबीर के लिए कुछ अलग से जज्बात साफ नजर आ रहे थे और झलक उन जज्बातों को अच्छी तरह महसूस कर रही थी। फिलहाल अब कबीर मायूसी भरे चेहरे के साथ झलक और अनामिका के पास आया और बोला, देखो तुम चाहो तो मुझे एक थप्पड़ मार लो या फिर कोई और काम करवा लो, 7 की जगह 14 चक्कर कटवा लो, लेकिन मैं ये टास्क नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अनामिका ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है मत करो, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करती। ये कहकर वो अंदर जाने लगी, लेकिन तभी कबीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और एक पल भी गवाए बिना आगे बढ़कर उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। अब तो अनामिका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में कबीर ने उसे किस कर दिया। उसे तो लगा था कि कबीर रोएगा, बहाने बनाएगा और कहेगा कि वो ये नहीं कर पाएगा, फिर बदले में कोई और टास्क दे देगा और उसे खूब छेड़ेगी, लेकिन यहाँ तो कबीर ने एक ही पल में टास्क पूरा कर दिया। अनामिका का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, उसके गाल शर्म से पूरी तरह लाल हो गए, वो बिना कुछ बोली सीधी अंदर चली गई। वहीं कबीर हैरानी से उसे जाते हुए देखता रह गया। फिर उसने बेचैनी से आदित्य और अभय को देखते हुए कहा, अब ये इस तरह से क्यों चली गई, मैंने तो वही किया जो इसने कहा था, जबरदस्ती तो नहीं की ना। तभी अभय तुरंत बोला, अरे बड़े ब्रह्मचारी, जरा सा ब्रह्मचार्य टूट गया क्या, तुझे इस बात का डर नहीं लग रहा और तुझे अफसोस नहीं हो रहा, तू तो ये सोच रहा है कि वो क्यों चली गई। अब अभय की बात सुनकर कबीर को थोड़ा अजीब सा लगने लगा, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि अनामिका इस तरह अचानक क्यों चली गई। फिलहाल कबीर भी तुरंत अभय के पीछे पीछे अंदर चला गया। रोहन भी तब तक अंदर जा चुका था, क्योंकि सब लोग काफी ज्यादा थक चुके थे। प्लेग्राउंड में अब केवल झलक और आदित्य ही बचे थे। आदित्य ने झलक की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे टास्क कब देंगी, बताइए ना मुझे क्या करना होगा, आप जो कहेंगी मैं करूंगा, अगर आप चाहें कि मैं आपको किस करूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर झलक ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस हल्के से आदित्य के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया, अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। आदित्य उसके पीछे देखते हुए बुदबुदाया,
बेटा कुछ तो टास्क दे दो, चाहे किस करने का ही दे दो, कम से कम मेरी खुशी तो पूरी हो जाएगी। ये कहते हुए वो भी अंदर चला गया। सब लोग काफी ज्यादा थक चुके थे। दादाजी ने सबको देखकर कहा, क्या बात है बच्चों, बहुत थक गए हो क्या? चलो एक काम करो, पहले शरबत पियो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आधा घंटा रुक कर खाना खाना, वरना इस तरह से पेट दर्द हो जाएगा। दादाजी की बात सबने मान ली। तभी अनामिका थोड़ी संभल कर दादाजी के पास आई और बोली, दादाजी हम बच्चे थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक ले लें, बहुत ज्यादा थक गए हैं। दादाजी ने तुरंत सख्ती से कहा, नहीं ऐसी बेकार चीजें नहीं, शरबत पियो, घर का बना हुआ। मैं अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह की नुकसानदायक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम लोग? चलो फटाफट से कुछ खा पी लो। फिर उन्होंने झलक की तरफ देखते हुए कहा, और झलक बेटा तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, जब तक तुम नहीं खाओगी ये भी ठीक से नहीं खाएंगे, पहले तुम थोड़ा सा खा लो फिर इन्हें भी खिला देना। दादाजी की बात सुनकर झलक का चेहरा हल्का सा नरम पड़ गया। वो धीरे से सिर हिलाकर उठी और सीधे कमरे की तरफ चली गई। स्नेहा जी भी वहीं खड़ी थी और किचन के लिए कुछ स्पेशल बनाने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि झलक तो उनके हाथ का खाना बेहद पसंद है। सबके मना करने के बावजूद भी उन्होंने पूरे खाने पीने की जिम्मेदारी खुद संभाल रखी थी। स्नेहा जी को छोटी छोटी चीजें खुद कंट्रोल में रखना शुरू से ही पसंद था। तभी पीछे से आदित्य आया और हल्के से चोरी से नजर बचाकर झलक को देखने लगा और सोच रहा था, ऑफिस में सख्त और गंभीर रहने वाली झलक को घर में इस तरह अलग रूप में देखकर आदित्य को एक अजीब सी राहत और सुकून महसूस हो रहा था। झलक ने उसे हल्का सा देखा, लेकिन इस बार उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए।
वो बड़े प्यार से सबके लिए खाना लगाने में लग गई और घर का माहौल धीरे धीरे फिर से हल्का और सुकून भरा हो गया।